अच्छा, एक कल्पना करते हैं, दो लोग हैं, एक एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ जिसने अपनी कंपनी को मतलब दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया, बेशुमार दौलत है, शोहरत है, ताकत है, लेकिन इस सफलता के पीछे हजारों कर्मचारियों की छंटनी, पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखना और कई अनएथिकल डील्स की कहानियां भी हैं।
जी
और दूसरा व्यक्ति है एक छोटा सा दुकानदार जो 40 साल से अपनी गली में ईमानदारी से सौदा बेच रहा है, कभी मिलावट नहीं की, कभी ज्यादा दाम नहीं लिए, बहुत अमीर तो नहीं बन पाया पर मोहल्ले में हर कोई उसकी सज्जनता की मिसाल देता है। अब सवाल यह है कि हमारा समाज असली हीरो किसे मानता है?
और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत के केंद्र में है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें थोड़ा असहज करता है, क्योंकि ये हमारी उन धारणाओं पर चोट करता है जिन्हें हम सच मानकर जीते आए हैं।
बिल्कुल।
और इस सवाल की जड़ें हमें मिलती हैं पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प में।
यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए 18 सूत्रों का एक एक शक्तिशाली घोषणा पत्र है।
बिल्कुल।
और आज हम इसके 10वें संकल्प पर गहराई से बात करने वाले हैं।
हाँ।
जो कहता है, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे।
ये क्रांतिकारी विचार
है ना?
क्योंकि हमारा समाज तो ठीक इसका उल्टा करता है।
हाँ।
हम सफलता को पूछते हैं।
हाँ।
एक पुरानी कहावत है, चमत्कार को नमस्कार किया जाता
है। हाँ, बिल्कुल।
जो सफल है, जो शक्तिशाली है,
हाँ,
दुनिया उसके आगे सिर झुकाती है।
बिल्कुल।
ये देखे बिना कि उस सफलता के पीछे का रास्ता कैसा था।
हाँ।
ये संकल्प उसी अंधी दौड़ पर सवाल उठाता है।
लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है।
पूछिए।
क्या सफलता का जश्न मनाना समाज की प्रगति के लिए जरूरी नहीं है? अगर हम सफल लोगों की सराहना नहीं करेंगे तो फिर लोगों में आगे बढ़ने की, कुछ बड़ा हासिल करने की महत्वाकांक्षा वो कैसे जगेगी? लोग मेहनत ही क्यों करेंगे?
ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसे समझना जरूरी है। देखिए, ये सत्संकल्प सफलता का विरोधी नहीं है।
अच्छा।
ये सफलता की हमारी परिभाषा का विरोधी है। ये कहता है कि सफलता बुरी नहीं है, लेकिन सफलता को मापने का हमारा जो पैमाना है वो गलत है।
पैमाना गलत है।
हाँ। इसे समझने के लिए पूज्य गुरुदेव एक बहुत सरल सा उदाहरण देते हैं, चाकू का।
चाकू का?
हाँ। अपने आप में एक चाकू ना तो अच्छा है न बुरा, वो महज एक औजार है।
सही बात है। एक ही चाकू से कोई सर्जन किसी की जान बचा सकता है और कोई हत्यारा किसी की जान ले सकता है।
बिल्कुल। चाकू का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि वो कितना तेज या कीमती है, बल्कि इस बात से तय होता है कि उसे चलाने वाला हाथ और उस हाथ के पीछे की नियत कैसी है।
ठीक इसी तरह मनुष्य की योग्यता, उसका धन, उसका पद, उसकी प्रसिद्धि, ये सब भी उस चाकू की तरह साधन मात्र है।
साधन है। इनका असली मूल्य इस बात से तय होता है कि इनका उपयोग किस लिए हो रहा है, समाज को जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए, मानवता की भलाई के लिए या शोषण के लिए।
अच्छा, तो मतलब एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो विनाशकारी हथियार बनाता है।
हाँ।
और एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो कैंसर की दवा खोजता है।
जी।
दोनों में योग्यता तो बराबर हो सकती है, पर एक की योग्यता समाज के लिए जहर है और दूसरे की अमृत।
बिल्कुल।
और हमें इसी फर्क को पहचानने की जरूरत है।
आपने एकदम सही पकड़ा। और जब समाज इस फर्क को पहचानने में गलती करता है, जब हम सिर्फ बाहरी चमक दमक देखकर तालियां बजाने लगते हैं, तो हम अनजाने में एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं।
किस तरह की प्रवृत्ति?
इसे आप एक तरह का सोशल प्रूफ कह सकते हैं। जब लोग देखते हैं कि अनीति और अधर्म से अमीर बने व्यक्ति का समाज में खूब आदर सत्कार हो रहा है।
हाँ, संदेश यही मिलता है कि पैसा कमाने के लिए कोई भी रास्ता चलेगा।
हाँ।
क्योंकि अंत में समाज आपके तरीकों को नहीं, सिर्फ आपकी तिजोरी को सलाम करेगा।
और यहीं से समाज में अपराध और भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होती हैं।
हाँ।
ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। हम सिर्फ उन गिने चुने लोगों को देखते हैं जो गलत रास्ते पर चलकर सफल हो गए और उनकी कहानियों से प्रभावित हो जाते हैं।
हाँ, ये तो होता है।
हम उन हजारों लाखों को भूल जाते हैं जो उसी गलत रास्ते पर चलकर बर्बाद हो गए, जेल गए या गुमनामी में खो गए।
मतलब हम सिर्फ सफल अपराधी को देखते हैं, असफल अपराधी को नहीं।
बिल्कुल सही।
ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लगता है। ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक मशीनरी है जो गलत दिशा में चल रही है और हम एक अकेले व्यक्ति के तौर पर भला क्या कर सकते हैं।
हम बहुत कुछ कर सकते हैं। असल में इस मशीनरी को बदलने की चाबी हम सबके पास है।
हमारे पास?
हाँ, हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली साधन है, आदर और अनादर।
आदर और अनादर।
हम किसे सम्मान देते हैं और किसका तिरस्कार करते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है।
लेकिन ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये तो बस एक भावना है।
सत्संकल्प में इसकी तुलना वोट की शक्ति से की गई है।
वोट की शक्ति?
हाँ, चुनाव में जब कोई अपना एक वोट डालता है तो वो एक बहुत छोटी सी क्रिया लगती है। एक अकेले वोट से क्या होगा?
सही बात है।
लेकिन जब करोड़ों लोग अपने इसी एक एक वोट का सही इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरे देश की दिशा बदल देते हैं, सरकारें बना और गिरा देते हैं।
वाह, मैंने कभी कभी इस तरह से नहीं सोचा था। तो मेरा किसी की सराहना करना या किसी से मुंह फेर लेना, ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है।
नहीं,
ये समाज की दिशा तय करने में मेरा एक नैतिक वोट डालना है।
बिल्कुल,
ये समाज को एक संदेश देना है कि देखो, हमारे हीरो ऐसे होने चाहिए।
बिल्कुल सही। जब हम सोच समझ कर किसी को सम्मान देते हैं तो हम समाज में एक आदर्श स्थापित करते हैं। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सत्संकल्प हमें दो बहुत स्पष्ट काम करने को कहता है।
क्या है वो दो काम?
पहला, जिन लोगों ने कठिनाइयों और बाधाओं को सहते हुए भी अपने जीवन में आदर्शों को जिंदा रखा है
जी,
उनका सार्वजनिक रूप से खुले मन से सम्मान और प्रशंसा होनी चाहिए। उनकी कहानियों को बार बार सुनाया जाना चाहिए।
भले ही वे भौतिक रूप से बहुत सफल ना हो, मतलब भले ही उनके पास बड़ी गाड़ी या बंगला ना हो।
हाँ, खासकर तब जब वे भौतिक रूप से सफल ना हो। सोचिए उस सरकारी कर्मचारी के बारे में जिसने रिश्वत के लाखों के ऑफर ठुकरा दिए और अपने बच्चों को एक साधारण स्कूल में पढ़ाया, या उस व्यापारी के बारे में जिसने ज्यादा मुनाफे के लालच में कभी मिलावट नहीं की।
सही।
या उस माँ के बारे में जिसने गरीबी में भी अपने बच्चों को ईमानदारी और अच्छे संस्कार दिए। ये हैं समाज के असली नायक।
बिल्कुल।
जब हम इनकी प्रशंसा करते हैं तो हम दूसरों को भी वैसा बनने के लिए प्रेरित करते हैं।
और दूसरा काम क्या है?
दूसरा काम थोड़ा मुश्किल है पर उतना ही जरूरी है। जो लोग निंदनीय तरीकों से, भ्रष्टाचार से, शोषण से उन्नति कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा या सहायता किसी भी रूप में नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि सत्संकल्प ये भी कहता है कि उनके द्वारा आयोजित अवांछनीय कार्यों में केवल उपस्थित होना भी उन्हें प्रोत्साहन देने जैसा है।
लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं है? किसी के कार्यक्रम में सिर्फ चले जाने से क्या होता है? कई बार सामाजिक या व्यावसायिक दबाव भी तो होता है।
होता है,
हमें जाना पड़ता है।
ये दबाव महसूस होता है लेकिन उसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। आप सोचिए, जब समाज में प्रतिष्ठित माने जाने वाले लोग, जैसे कोई बड़ा लेखक, कलाकार या शिक्षक
जी,
किसी बेईमान उद्योगपति की पार्टी में जाकर उसकी शान बढ़ाते हैं, तो आम जनता को क्या संकेत मिलता है?
संकेत यही मिलता है कि उस उद्योगपति के गलत कामों को इन श्रेष्ठ पुरुषों का मौन समर्थन प्राप्त है।
बिल्कुल, आपकी उपस्थिति ही आपका समर्थन बन जाती है।
हाँ,
इससे उस गलत काम को एक तरह की सामाजिक स्वीकृति मिलने लगती है।
बिल्कुल।
इसलिए ऐसे लोगों और ऐसे आयोजनों से विनम्रतापूर्वक दूरी बनाना भी एक तरह का मौन विरोध है, जो बहुत जरूरी है।
ये बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब हमारा मौन भी बोलता है और हमारी उपस्थिति भी एक बयान देती है।
हाँ,
तो इन सब बातों के बाद सवाल वहीं आके खड़ा होता है कि अगर सफलता, पैसा और ताकत सही पैमाने नहीं है तो फिर किसी इंसान को तौलने की सही तराजू है क्या?
सही तराजू है सज्जनता और आदर्शवादिता।
सज्जनता और आदर्शवादिता
यानी उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है।
हाँ।
उसके जीवन के मूल्य क्या हैं।
हाँ।
उसकी नीयत कैसी है।
हाँ।
क्या वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है या उसके जीवन में परमार्थ, सेवा और दूसरों की भलाई का भी कोई स्थान है। क्या वो कठिनाई में भी अपने सिद्धांतों पर टिका रहता है या फायदे के लिए उन्हें बेच देता है।
यानी कि मूल्यांकन पूरी तरह से बाहरी उपलब्धियों से हटकर आंतरिक गुणों पर आधारित होना चाहिए।
बिल्कुल, और इसी विचार को पूज्य गुरुदेव ने सत्संकल्प में एक बहुत ही सशक्त पंक्ति में बांधा है
जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है।
क्या है वो?
वो कहते हैं, बेईमानी से करोड़पति बना व्यक्ति भी हमारी दृष्टि में तिरस्कृत होना चाहिए, और वो असफल और गरीब व्यक्ति जिसने विपन्न परिस्थितियों में भी जीवन के उच्च आदर्शों की रक्षा की, उसे प्रशंसा, प्रतिष्ठा, सम्मान और सहयोग सभी कुछ प्रदान किया जाना चाहिए।
ये पंक्ति तो सच में झकझोर देने वाली है।
है।
ये हमारे पूरे सोचने के तरीके को 180 डिग्री पर उलटने की बात करती है।
जी,
एक करोड़पति का तिरस्कार और एक गरीब का सम्मान, समाज में तो हम हर दिन इसका ठीक उल्टा होते हुए देखते हैं।
और जब तक जनता का, यानी हम और आप जैसे सामान्य लोगों का ये मापदंड नहीं बदलेगा, तब तक समाज नहीं बदल सकता।
जब तक हम बेईमान करोड़पति को माला पहनाते रहेंगे और मंच पर बिठाते रहेंगे, तब तक अपराधी मूंछों पर ताव देकर अपनी सफलता पर गर्व करते रहेंगे
और वो और ज्यादा उच्छृंखल होते चले।
बिल्कुल।
और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही खतरनाक है।
क्या?
जो सदाचारी लोग हैं, जो ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं, वे अपनी सीमित सफलता या असफलता को देखकर निराश होंगे।
सही बात है।
उन्हें लगने लगेगा कि इस दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। शायद उनके मन में भी ये विचार आए कि जब गलत करके लोग सम्मान पा रहे हैं तो मैं ही क्यों मूर्ख बनूं? और हो सकता है कि वे भी सही रास्ते से विचलित हो जाएं।
हाँ, यही समाज का सबसे बड़ा खतरा है, अच्छे लोगों का अपनी अच्छाई से विश्वास उठ जाना। इसीलिए मूल्यांकन का ये नया पैमाना स्थापित करना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि एक नए और बेहतर समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य शर्त है।
सत्संकल्प के अंत में पात्रता का विकास की भी बात कही गई है, उसका इस पूरी चर्चा से क्या संबंध है?
उसका बहुत गहरा संबंध है, ये उस समस्या का समाधान है।
अच्छा।
अब तक हम बात कर रहे थे कि दूसरों का मूल्यांकन कैसे करें। पात्रता का विकास हमें बताता है कि हमें अपना मूल्यांकन कैसे करना चाहिए और अपने जीवन की दिशा क्या रखनी चाहिए।
तो इसका क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है कि हमें बाहरी सफलता, धन और पद के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर की पात्रता, यानी अपने चरित्र, अपनी योग्यता और अपनी सज्जनता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए।
ये तो पेड़ के पत्तों पर पानी छिड़कने के बजाय जड़ को सींचने जैसा है।
आपने बहुत सुंदर उपमा दी, बिल्कुल यही बात है। बाहरी सफलता पत्तों और फलों की तरह है, जबकि हमारी पात्रता, हमारा चरित्र जड़ की तरह है। अगर जड़ मजबूत होगी तो उस पर सही समय आने पर पत्ते, फूल और फल अपने आप लगेंगे।
सही बात।
लेकिन अगर हम सिर्फ पत्तों पर पानी छिड़कते रहेंगे तो पेड़ बहुत जल्दी सूख जाएगा। जब व्यक्ति अपने चरित्र और अपनी पात्रता का विकास करता है तो सच्ची विभूतियां और संपदाएं, यानी अच्छा स्वास्थ्य, संतोष, सच्चे रिश्ते और जरूरत के मुताबिक साधन स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करते हैं।
तो आज की इस बातचीत का सार ये है कि हम किसे अपना हीरो मानते हैं, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद नहीं बल्कि एक गहरा सामाजिक और नैतिक निर्णय है।
जी।
किसी व्यक्ति का सच्चा मूल्य उसकी बैंक बैलेंस शीट में नहीं बल्कि उसकी कैरेक्टर शीट में होता है।
बिल्कुल।
और एक समाज के तौर पर हमारा काम है कि हम सही लोगों को सम्मान दें ताकि सही मूल्यों को बढ़ावा मिले।
बिल्कुल। चुनाव हमारा है कि हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो धन को पूछता है, या एक ऐसा समाज जो चरित्र का सम्मान करता है।
बिल्कुल।
लेकिन ये सत्संकल्प हमें दूसरों को परखने का एक नया चश्मा तो देता ही है, पर इस पूरी बातचीत ने मुझे एक और गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया है।
कैसा सवाल?
सवाल यह है कि ये बदलाव दूसरों से शुरू करने से पहले क्या हमें खुद से एक सवाल नहीं पूछना चाहिए? हमें पूरी ईमानदारी से, जब कोई नहीं देख रहा हो तब खुद से पूछना चाहिए, हमारे अपने असली हीरो कौन हैं?
अच्छा।
हम मनी मन किसकी तरह बनना चाहते हैं? क्या हम भी चुपके से उस ताकत, उस ग्लैमर, उस सफलता से प्रभावित होते हैं, भले ही हमें पता हो कि उसका रास्ता गलत है? क्या हमारे व्यक्तिगत मापदंड भी सफलता पर आधारित हैं या चरित्र पर? शायद असली युग निर्माण की शुरुआत इसी आंतरिक ईमानदारी से होती है, जब हम सबसे पहले अपने व्यक्तिगत हीरो की परिभाषा बदल देते हैं।